हेलो दोस्तों, योग की पाठशाला में मैं योगा एक्सपर्ट समता फिर से आपके सामने रूबरू होने आई हूँ। तो आइए हम बात करते हैं आज एक नए प्राणायाम के बारे में जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। यह कैसे करते हैं और इसके लाभ, विधि और इससे होने वाली असावधानियाँ, हम सबके बारे में आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, प्राणायाम जीवन का एक रहस्य है। ये जीवन श्वासों की आवागमन पर ही हमारा जीवन निर्भर होता है, ये तो सभी को पता है। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से रोग और शोक दोनों उत्पन्न होते हैं, ये भी हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रदूषण भरे माहौल से हमें होने वाली चिंता यह दिन ब दिन सताई जा रही है कि प्रदूषण हो रहा है, जिसका मेन कारण है वातावरण में हमें पेड़ पौधों की कमी बहुत मिल रही है, जिसके कारण से हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। प्रदूषण भरे माहौल और चिंता से हमारी श्वासों की गति अपना स्वाभाविक रूप यूं ही खो ही देती है, जिसके कारण प्राणवायु संकट काल में हमारा साथ नहीं दे पाती। ऐसे में प्राणायाम को सीख कर अपने जीवन का एक अंग बनाए, क्यों ना हम अंग ही बनाए और हम उसे अपने जीवन में इस तरह घोल दें जिस तरीके से हम सुबह अपनी नित्य क्रियाएं जिस तरीके से करते हैं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपनी नित्य क्रियाएं करने के बाद में हमें लंच हो चाहिए, हमें चाय की तलब होती है, हमें न्यूज़पेपर चाहिए और हमें भागम भागी हमें अपना जॉब भी चाहिए। फिर शाम को थके हारे आकर के हमें डिनर भी चाहिए और थोड़े बहुत टीवी में अपनी न्यूज़ देखते हुए आराम से एक चैन भरी नींद चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमने प्राणायाम की जगह पर वो तो खाली रह गई, वो तो हमने उसको पूरा किया ही नहीं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि प्राणायाम को किस जगह पर हमें अपने जीवन में फिट करना है। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लें कि सुबह उठते ही जब हम अपनी नित्य क्रिया करने के बाद इस प्रदूषण भरे माहौल को, जैसे आज जब हम किसी एक मेट्रो सिटी में अगर हम रह रहे हैं तो हमें आजकल जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो हमें ये फॉग और ये धुआं हमेशा से, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दियां हो, हमेशा से हमें ये मिलता, दूर दूर से ही हमें प्रतीत होने लगता है। सुबह उठते ही सबसे पहले जब हम अगर प्राणायाम को अपनी जीवन शैली में लाएंगे तो हमें दिन ब दिन उसका लाभ और उसकी उसके होने वाली विशेषताएं दिन ब दिन हमारे शरीर में और हमारे जीवन में पूर्णता आने लगेगी। सबसे पहले हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के बाद ही किसी दूसरे प्राणायाम करना चाहिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है। तो आइए जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम हमें कैसे करना है और उनके लाभ। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ ही है धौंकनी, अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें लोहार की धौंकनी की तरह आवाज करते हुए वेग पूर्वक शुद्ध प्राणवायु को अंदर ले जाना और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकना। जैसे एक लोहार होता है दोस्तों, जिस तरीके से लोहार अपना काम करता है उसे एक धौकनी, जैसे अगर वो किसी भी चीज़ को बनाता है तो धौकनी से अपने हथियार से एक लोहे पर वार करता है तो वो आवाज़ आती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमें वायु को हमें अपने अंदर की श्वास को बाहर की ओर फेंकना और बाहर से हमें अंदर की ओर श्वास को ले जाना। तो आइए दोस्तों मैं बात करती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम की विधि। जैसा कि मैंने हमेशा से बताया हुआ है, कोई भी प्राणायाम हो वो सिंहासन, सुखासन, ध्यान मुद्रा में बैठकर ही करना चाहिए। सबसे पहले कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए शरीर और मन को स्थित रखें, आंखें बंद कर दें, फिर तेज गति से श्वास लें, जैसा कि मैंने बताया अभी, तेज गति से श्वास लें और तेज गति से ही श्वास को बाहर निकालें। श्वास लेते समय पेट को फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट को पिचकाना चाहिए, इससे नाभि स्थल पर दबाव पड़ता है। इस प्राणायाम को करते समय श्वास की गति सबसे पहले धीरे रखें, अर्थात 2 सेकंड में एक श्वास भरना। दोस्तों इस बात की जानकारी आपको पूर्णता लेनी पड़ेगी कि हमें कितने सेकंड में कितने मिनट में एक प्राणायाम करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों 2 सेकंड में एक श्वास भरना है और फिर श्वास को छोड़ना है, फिर मध्यम गति से श्वास भरें और छोड़ें, अर्थात 1 सेकंड में एक श्वास भरना और श्वास को छोड़ना, फिर श्वास की गति तेज कर दें अर्थात 1 सेकंड में 2 बार श्वास भरना और श्वास निकालना। श्वास लेते समय और छोड़ते समय एक ही गति बनाकर रखें, कुछ इस तरह। वापस सामान्य अवस्था में आने के लिए श्वास की गति धीरे धीरे कम करते जाएं और अंत में एक गहरी श्वास लेकर फिर श्वास निकालते हुए पूरे शरीर को ढीला कर दें। एक बार में श्वास छोड़ें और ढीला। यह प्राणायाम कुछ कुछ कपालभाति की तरह होता है, आइए जानते हैं इनके लाभ। इस प्राणायाम से शरीर को प्राणवायु अधिक मात्रा में मिलती है। जैसे प्राणवायु, मैं आपको इसको क्लियर कर दूं, श्वास ऑक्सीजन, जिनको भी लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की जैसे हम पूर्णतः श्वास नहीं ले पाते हैं, लगता है कि हम किस तरीके से हम श्वास ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो हमें यह भस्त्रिका प्राणायाम निरंतर रूप से करने से ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इससे हमको निजात मिलती है। यह प्राणायाम शरीर को ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा पूर्ण करता है, जिसके कारण शरीर के सभी अंगों से दूषित पदार्थों को दूर करता है। तेज गति से श्वास लेने और छोड़ने के इस क्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हृदय में रक्त नलियों को शुद्ध व मजबूत बनाए रखता है। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमारा डायाफ्राम तेजी से काम करता है, जिसमें पेट के अंग मजबूत होकर सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमारी पाचन शक्ति तो मजबूत बनती ही है। तो दोस्तों, आपने जाना कि भस्त्रिका प्राणायाम हमें किस तरह करना चाहिए, किस गति में करना चाहिए, कितने सेकंड में करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए और इनसे होने वाले लाभ। दोस्तों, जान लेते हैं इनकी सावधानियाँ। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि प्राणायाम महिलाओं और लड़कियों को पीरियड्स के दौरान पे नहीं करना चाहिए और गर्भावस्था की स्थिति में भी नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हर्निया, दमा, टीबी, अल्सर, पथरी, मिर्गी, स्ट्रोक से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ये अभ्यास ना करें। अभ्यास को करने से पहले हम आधा सेकंड, 1 सेकंड हम अपने आप को पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम प्राणायाम करेंगे। फेफड़े, गला, हृदय या पेट में किसी प्रकार की समस्या हो, नाक बंद हो या साइनस की समस्या हो, तो भी या किसी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही यह प्राणायाम करें। अभ्यास करते समय अगर चक्कर आने लगे, घबराहट हो, ज़्यादा पसीना आने लगे, उल्टी जैसा मन में प्रतीत होने लगे, तो यह प्राणायाम रोककर पूर्ण रूप से आराम करें, लेट जाएं, उसके बाद ही हम प्राणायाम करें। नए अभ्यर्थी, जैसे जो लोग ने अभी अभी नया शुरू किया है प्राणायाम, तो मैंने पहले भी दोस्तों बताया हुआ है कि प्राणायाम करने से आधा सेकंड, 30 सेकंड ही पहले स्टार्टिंग में करें और एक बैग से आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट प्राणायाम ना करें। यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो रुक करके आराम कर लें, लेट लें और फिर से आप शुरू कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी शुरू में कम से कम 10 बार श्वास छोड़, सकते हैं और ले सकते हैं। जिनको तेज श्वास लेने में परेशानी हो या कुछ समस्या आती हो तो आरंभ में श्वास धीरे धीरे लें। ध्यान रहे दोस्तों, यह प्राणायाम दोनों नासिका छिद्रों के साथ उत्पन्न होता है और साथ में संपन्न होता है। श्वास लेने और छोड़ने को एक चक्र माना जाएगा जो एक बार में लगभग 20 चक्र के बराबर होता है। जब यह 20 चक्र 25 चक्र होने लगे तो यह प्राणायाम पूर्ण होगा। पूरा प्राणायाम करने के बाद श्वास की गति को पुनः सामान्य करने के लिए अनुलोम विलोम या आंतरिक और बाहरी यानी इंटरनल और एक्सटर्नल प्राणायाम करने के लिए हमें 2 से 3 बार या 5 बार कपालभाति मध्यम गति से करते हुए तीव्र गति तक करके यह प्राणायाम पूर्ति करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्राणायाम पूर्ति पर दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करके चेहरे व आँख पर लगाएं और उसके बाद धीरे से आंखें खोलने के बाद में ओम का उच्चारण मध्यम गति से तो ये हुआ दोस्तों हमारा आज का कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम का चक्र पूरा हुआ। फिर हम मिलेंगे अपने नए एक प्राणायाम की ओर अपनी योगशाला और अपनी योग पाठशाला में। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।